नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दे दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार नए संस्थान बनाने और देश के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है। विधेयक में असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी है। श्री प्रधान ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत आईएम गुवाहाटी को 555 करोड़ रुपए का कोष प्राप्त होगा।
देशवासियों को, विशेष करके आसाम वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसी एकेडमिक ईयर में आईआईएम गुवाहाटी में स्टूडेंट की एडमिशन होगी, प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी और पढ़ाई भी शुरू किया जाएगा।
लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है। कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया।
गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 130वां संविधान संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक भी पेश किया। श्री शाह ने बिहार में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच ये विधेयक पेश किए।
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सहित एनडीए गठबंधन के कई नेता उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि सीपी राधाकृष्णन एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस के प्रमुख विद्वानों और थिंक टैंक के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। बैठक के दौरान उन्होंने भारत रूस संबंधों, समकालीन विश्व भू राजनीति और भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में आगामी सुधारों से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। ये बात उन्होंने नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की क्षतिपूर्ति उपकर, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा तथा कर दरों की तार्किकता पर गठित मंत्री समूह को संबोधित करते हुए की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के इस वर्ष जून माह के रिकॉर्ड के अनुसार 21,89,000 सदस्यों को शामिल किया गया है, जो अभी तक की सर्वाधिक संख्या है। आंकड़ों के अनुसार 9.14% की वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से अब तक की ये सर्वाधिक संख्या है। बम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 213 अंक बढ़कर 81,858 पर और निफ्टी 70 अंक की बढ़त के साथ 25,051 पर बंद हुआ। हॉकी एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे। यह टूर्नामेंट इस महीने की 29 तारीख से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।